ओम शांति। हम सब बाबा के बच्चे ईश्वरीय विश्वविद्यालय में बैठे हैं, विद्यालय में बैठे हैं ना। अच्छा, तो माताएं थोड़ा सा पहले लाइन ठीक करके तो बैठो, सत्संग की तरह नहीं बैठना है, क्लास की तरह। इधर बराबर में इसके आओ, बहन आप आगे आओ, इधर इनके बराबर आओ। स्कूल में बच्चे कैसे लाइन बनाते हैं, है? मालूम नहीं ऐसा यहाँ तो कोई। हाँ, ये तीसरी लाइन बना लीजिए, आप लोग लाइन बनाइए ठीक से सीधा। क्या हुआ, जा क्यों रही हैं माता जी, क्लास में मन नहीं लगा है? सेवा का? अच्छा 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 आओ भाई, पीछे कौन सा मैग्नेट है, उठ के आ जाओ, सोफे पर आ जाओ, नीचे नहीं बैठ सकते तो, पर क्लास की रूपरेखा तो लगे ना कुछ। ओम शांति। स्वर्ग का रचयिता शिव बाबा स्वर्ग की रचना रच रहे हैं, किसके द्वारा, किसके द्वारा? ब्रह्मा द्वारा, ब्राह्मणों द्वारा, माताओं बहनों द्वारा। विचार करें, रचने वाला कौन? सर्वशक्तिवान रचयिता। और हम कौन है, देखो अपने अपने को देखो पहले, और रच क्या रहा है? स्वर्ग की दुनिया। हम कहां बैठे हैं, हम कहां बैठे हैं? नरक की दुनिया में है, सही या नहीं? और स्वर्ग रचने के लिए बाबा ने हम आत्माओं को चुना है। अब हम बाबा के बच्चे सोचें कि क्या सचमुच में मेरे अंदर ये भावना रहती है, मैं सत्ययुग की स्थापना के निमित्त हूं, रहती है ये भावना? ऐसे ऐसे तो कर रहे हो, फिर आगे आगे और आएगा प्रश्न है? मैं आत्मा सत्ययुग की स्थापना के निमित्त हूं। अभी हम अपना एक पिछले एक घंटे का, अभी समझो लगभग 8:30 है, 7:30 से 8:30 तक एक घंटे का चार्ट देखें, मैंने स्वर्ग की स्थापना के लिए क्या कार्य किया, क्या संकल्प किया, किया कुछ किया बताइए, सोचो। कार्य कितना बड़ा, कराने वाला कितना बड़ा, और मैं आत्मा निमित्त हूं, तो क्या मुझ निमित्त आत्मा की ये स्मृति बराबर बनी रहती है कि बाबा ने मुझे सत्ययुग की स्थापना के निमित्त बनाया है? या सोचते हैं ठीक है सत्ययुग आ जाएगा तो उसमें चले जाएंगे, नहीं तो कलयुग में बैठे हैं, या संगम युग पर बैठे हैं, या बाबा के घर में बैठे हैं। सत्ययुग की स्थापना के लिए स्वयं की क्या तैयारी कर रहे हैं, और विश्व के लिए क्या कर रहे हैं? सत्ययुग आएगा या नहीं आएगा, लगता है आप लोगों को आएगा? मुझे तो नहीं लगता है, हैं? दुनिया तो ऐसे ही चलती आई है, चलती रहेगी। आएगा सत्युग? कब आएगा? कब आएगा? कब होंगे हम रेडी? हमारा कौन सा मुहूर्त है बताओ बहन, हैं? ये बहन तो बहुत अच्छी है जवाब देने में। तो ज्ञान का मतलब है, ज्ञान केवल सुनना नहीं है। अभी लौकिक अलौकिक कलयुगी दुनिया संगम युगी दुनिया सब में एक ही फैशन हो गया है। कौन सा फैशन है? सारा समय सुनना 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 है, ऐसा या नहीं है? क्लास में बैठे हैं, क्लास भी आप सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। यहां से उठ के जाएंगे, थोड़ा सा बाबा के कमरे में बैठेंगे, और कई बार तो हम देखते हैं जो बाबा के कमरे में बैठे हैं ना, वो भी पता नहीं यहां कान में क्या फंसा लेते हैं, सुनते रहते हैं। वो योग होता है, वियोग होता है, क्या होता है समझ नहीं आया। फिर कमरे में जाएंगे, जो कोई हमारे दो चार साथी होंगे, कुछ उनसे बात कर लेंगे, फिर करवट बदलेंगे, फिर थोड़ा सा अपना व्हाट्सएप देखेंगे, कुछ सुनेंगे, कोई यूट्यूब देखेगा। ऐसे ही करते हैं ना या नहीं करते हैं? क्या विचार है, हैं? हैं? नहीं नहीं ऐसे मत समझो। तो ये सचमुच अभी हमारे ब्राह्मणों को ये चेक करने की जरूरत है। कितना सुनके 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 सुनते ही रहते हैं, सुनते ही रहते हैं। करेंगे कब? मान लो मुझे भोजन बनाना नहीं आता है, और मैं देख रही हूं कुछ ये साउथ इंडिया की बहनें बैठी हैं, है ना? ऐसे ही है ना आप लोग? कुछ नॉर्थ के होंगे, कुछ ये नेपाल की हैं। अब मैं आपसे आज पूछती हूं, बहन आप तो साउथ इंडिया से हो, मुझे मालूम है वहां इडली डोसा बहुत अच्छा बनता है, मुझे सिखाओ। अब मैंने एक से पूछा, दूसरे से पूछा, तीसरे से पूछा, हाँ, फिर मैंने सोचा अच्छा नेपाल की बहन है, इससे भी सीखूं इनके वहां क्या बनता है। बस मैं सुन रही हूं, लिख रही हूं, बन जाएगा? बन जाएगा? आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे बहन जी चाहे यहां ना भी बने इडली डोसा, हम कल आपको थोड़ा सा ऐसा तैयार करके बताएंगे, सिखाएंगे, आप अपने हाथ से बनाना, फिर आपको पता पड़ेगा। यही होता है ना? और ज्ञान के लिए हम क्या समझते हैं? ज्ञान के लिए क्या समझते हैं? सुनना 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 सुनना। बहुत से भाई बहन यही कहते हैं, कहते हैं हम ना भाई क्या सुन रहे हो दीदी, देख लो हम तो क्लास ही सुन रहे हैं, फलाने का क्लास फलाने का क्लास। कोई कोई तो कई बार दिखाते हैं, कहते हैं आपका क्लास सुन रहे हैं। याद किसको करना है? याद किसको करना है? शिव बाबा को। हमें याद क्या है? याद क्या है? फलाने भाई ने फलानी बहन ने ये क्लास कराया और उसमें ये बताया। बाबा रोज कह रहा है अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। फलाने ने ये कमेंट्री दी, अब मुझे कौन याद है, शिव बाबा या फलाना? सच्ची सच्ची बताना। ये सूक्ष्म चेकिंग है। मैंने मुझे आज का क्लास कराना है, मैंने कहा भाई क्या क्लास कराना है? कहते जी समय की पुकार। तो भाई समय की पुकार ये है, आज भी बाबा की मुरली में था, कल की भी बाबा की मुरली में यही था, देह सहित देह के सब संबंध भूलो, यही था ना आज की मुरली का सार? यही था ना? बाबा ने ये कहा, मम्मा ने ये कहा, ये तो हम सब अब भूलते जा रहे हैं। और क्या याद कर रहे हैं? और ये भी विचित्रता है, जैसे जैसे बाबा हमें सूक्ष्मता की ओर ले जा रहे हैं, माया भी उतनी ही सूक्ष्म होकर हमारे सामने आ रही है। उतने ही हमारे पास साधन है। माया को पता है हमें कौन सी चीज प्यारी है, हमें कौन सी चीज प्यारी है, बाबा और बाबा की बातें। तो व्हाट्सएप पे भी क्या आ रहा है? अब मान लीजिए मैं मुरली आपको यहां बैठ के सुना रही हूं, और आप सब उस समय क्या करते हैं, क्या करते हैं भाई जी, क्या करते हैं? माना जो प्रैक्टिकल है, डरने की बात नहीं है। मान लो अभी सवेरे का क्लास है, मैं मुरली सुना रही हूं, माताएं क्या करती हैं? राइट, मुरली सुना रहे हैं और सुनने वाले क्या कर रहे हैं? व्हाट्सएप खोल के उस मुरली को पढ़ रहे हैं। आपको क्या समझ आ रहा है, क्या समझ आ रहा है? बुरा ना माने, कुछ भी समझ नहीं आ रहा और कुछ भी याद नहीं हो रहा। आगे हम लोग जब मुरली सुनते थे, आज भी, आगे की बात क्या, आज भी अगर सुनने बैठते हैं तो अपना कॉपी पेन अपने साथ लेके आते हैं। जो सुनते हैं, कौन सी विशेष बात है, कौन सी विशेष पॉइंट है, उसको नोट करते हैं। अब नोट करने का तो जमाना ही चला गया। आजकल तो जो क्लास करा रहे हैं, ये भी कोई ना कोई अपने उसमें रिकॉर्ड कर लेगा और फटाफट फॉरवर्ड। आज ये क्लास हुआ था, बहुत अच्छा था, आप भी सुनना। दूसरा सुने, ये हमें ध्यान है, अच्छा है, कल्याण की भावना है, लेकिन मुझे सुनना है। तो वर्तमान जो समय की पुकार है वो ये है कि हम सब बाबा के बच्चे महीन पुरुषार्थी, सूक्ष्म पुरुषार्थी बने। आगे हमारी दादी जानकी जी जब हम लोग सेवा के क्षेत्र में आए, बहुत साल पहले 1971 में, हमें याद है रोज दादी जी एक क्लास कराती थी, मोटी बुद्धि और महीन बुद्धि, ये देखो। मोटी बुद्धि, महीन बुद्धि, तब हम लोग नोट तो करते थे मोटी बुद्धि क्या होती है, महीन, पर समझ कुछ नहीं आया था। अब कई बार सोचते हैं दादी क्या क्या सुनाती थी, मोटी बुद्धि कैसी है, देह अभिमान होगा, मोटी बुद्धि कैसे है, दुनिया का आकर्षण होगा, पॉइंट अब याद आते हैं, लेकिन समझ नहीं थी, बाल बुद्धि थी। ब्राह्मणों को वर्तमान समय में जैसे वातावरण बदल रहा है, आप लौकिक दुनिया भी देखो तेजी से किस ओर बढ़ रही है। विनाश की बात तो छोड़ो, सीरिया में क्या हो रहा है, अमेरिका क्या कर रहा है, रशिया क्या कर रहा है, वो तो छोड़ो, क्योंकि जब विनाश वास्तव में शुरू हो जाएगा तो आपको बताएं इतना हाहाकार। बहनो आगे आ जाओ, तीसरी लाइन बनाओ ना, जो पीछे बैठे हैं आगे आओ, तीसरी लाइन बनाओ, बहुत जगह है। तो विनाश के समय तो इतना हाहाकार होगा कि हम एक दूसरे को तो क्या खुद को ही संभाल लें तो बड़ी बात है। तो ये तो भूल जाओ कि विनाश हो रहा है, विनाश हो रहा है, विनाश तो जब होगा होगा, लेकिन उससे पहले मैंने तैयारी क्या की है। मेरा पुरुषार्थ सूक्ष्म पुरुषार्थ है, बाबा भी कहते हैं बच्चे देह सहित देह के सर्व संबंध भूल, और श्रीमद् भगवद गीता में भी यही है। हे अर्जुन, देह सही देह के सर्व संबंध छोड़। तो हम फिर क्या सोचते हैं, संबंधों को छोड़ना शुरू कर देते हैं। चलो मैंने घर बार छोड़ दिया, माँ बाप को छोड़ दिया, भाई बहनों को छोड़ दिया, यहां आके सेवा करने लग गए, कोई बहने भाई समर्पित हो गए, सोचते हैं अब हमने तो सब छोड़ दिया। छोड़ने की जो प्रक्रिया है वो शुरू कहां से होनी थी, कहां से होनी थी? स्वयं से, देह सहित। आप नोट कीजिए, देह सहित। पहले क्या भूलना था? अपनी देह को। संबंध किसके हैं? संबंध किसके हैं? इस देह के हैं। मां बाप भाई बहन मित्र दोस्त मामा चाचा इस देह के हैं ना। जब मुझे देह नहीं भूली तो मित्र संबंधी भूलेंगे? तो हम यहां बैठे भी आए, हम सेवा के लिए हैं, समर्पित हम सेवा के लिए हैं, फिर भी सवेरे शाम दोपहर कोई ना कोई टाइम निकाल के बात करेंगे वहां। हेलो, क्या हाल है? सब ठीक है? ठीक है। आज क्या खाया? लो, अब आप बताइए इस बात में है कोई सार? फिर हम क्या कहते हैं, अच्छा अरे कुछ और तो सुनाओ, क्या नई ताजी है, कहते हैं ना ऐसे। फिर कोई अगर और, या अरे अरे वो तो बताओ फिर फलाने का क्या हुआ, वो बीमार था ठीक हुआ नहीं हुआ, उसका बिजनेस ठीक चल रहा है नहीं चल रहा है, कहते हैं ना ऐसे ऐसे। अब ये हम किसको याद कर रहे हैं? क्या हम कभी ऐसा बैठकर बाबा को कहते हैं, अच्छा बाबा और सुनाओ और बताओ, ऐसे कहते हो? कहते हो कभी? वहां तो हम घड़ी देख के जाते हैं, अच्छा अभी तो भाई क्लास पूरा हो गया, अभी तो हमें सोना है, चलो दो मिनट बाबा से गुड नाइट करके आते हैं। गए बैठे मुश्किल से एक मिनट और उठे, फिर चप्पल पहना चल दिए, और कहीं बहुत भाग्यवान बैठने लगे और फोन वाइब्रेशन में था, वाइब्रेट हो गया, फोन देखा किसका है, तो बाबा को कहते हैं बाबा तू तो रुक, मैं आता हूं पहले बात कर ले। है ऐसा कि नहीं? हम क्लास में से उठ के फोन के लिए चले जाते हैं, क्या हम कभी अपना फोन छोड़ के बाबा के लिए भागते हैं? क्या विचार है, क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? राइट कह रही हूं या नहीं कह रही हूं? तो अभी तक हमारी बुद्धि इतनी स्थूलता में है, इतना हमें अभी तक दुनिया का आकर्षण है। अब हम सोचें, फिर मैं यहां से उठूंगी ना तो भी कई आएंगे पूछने, दीदी योग योग नहीं लगता है, अमृत वेला पावरफुल नहीं होता है, ये मत पूछना मेरे से, अपने से पूछना, क्या मैं योग लगाने के लिए इन सब चीजों का त्याग कर सकती हूं, कर सकता हूं? साधन बुरे नहीं हैं, साधनों का सदुपयोग करें, लेकिन इन साधनों के गुलाम ना बने। अभी हम सब कौन हैं? साधनों के गुलाम है। अब गुलाम बेचारा तो क्या करेगा? गुलाम की बुद्धि काम करती है कभी? करती है? गुलाम की बुद्धि कभी काम नहीं करती है, उसको तो क्या कहना होता है हर घड़ी, जी हजूर, मालिक ने साहेब ने जो कहा ये करो जी, ये करो जी, बस जी साहब, जी साहब। हम भी यही कर रहे हैं, अपनी कर्म इंद्रियों के गुलाम हैं। योग का समय है, क्लास का समय है, आज मन हो रहा है, बाहर बहुत अच्छी हवा चल रही है और मुझे कोई साथी सहेली भी ऐसी मिल गई, अरे चलो छोड़ो, रोज क्लास तो रोज ही होती है, बात तो वही होनी है, बाबा को याद कर लेंगे चलते चलते, थोड़ी ठंडी हवा खा ले, बस फिर ठंडी हवा में क्या क्या खाते हैं वो तो हम ही जाने। खाली ठंडी हवा खाई, इधर उधर के समाचार सुने, पूछे, फालतू व्यर्थ बातें की जिनसे हमारा कोई मतलब नहीं। तो विचार करें, हम स्वर्ग की स्थापना करने के निमित्त आत्माएं अपना संकल्प, समय और श्वास कहां लगा रहे हैं, कहां लगा रहे हैं। आप सभी सेवाधारी बनकर मधुबन में आए हैं, कुछ दिन रहेंगे फिर चले जाएंगे, फिर याद करेंगे, कहेंगे मधुबन में गए थे ना, वहां बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा योग लगता था। अब यहां आके तो फिर बहन जी माया है, बाबा तो कहता ही है ये मायावी दुनिया है। तो हमने फिर यहां रहकर कौन सी ट्रेनिंग, कौन सा अभ्यास किया? विचार कीजिए, मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती है और मैं अब गाड़ी चलानी सीख रही हूं। अब मुझे कोई पूछता है, बहन जी आप गाड़ी चला लेते हैं फोर व्हीलर? मैं कहूंगी भाई चला तो लेती हूं, लेकिन भीड़ में नहीं चला सकती। तो आप क्या मानेंगे, आती है बहन जी को गाड़ी चलानी? किस लिए सीखी थी? खाली मैदान में चलाने के लिए? तो खाली मैदान में चलाने से तो कोई फायदा नहीं, जब आना जाना होगा तो भीड़ में तो चलानी पड़ेगी। अब मैं जब जाऊंगी गाड़ी लेकर, तो ऐसा तो है नहीं कि सारी सड़क खाली हो जाएगी, हो जाएगी खाली? सामने से स्कूटर वाला भी आएगा, साइकिल वाला भी आएगा, और तो और गाय भी आएगी अचानक आ जाएगी। कई बार गाड़ियों का एक्सीडेंट इसीलिए हो जाता है, सामने से गाय आ गई, वो बचाने लगा और गाड़ी पलट गई। ऐसे ही मधुबन में रहे, बहुत अच्छा रहा। अरे अमृत वेला भी करते थे, मुरली भी सुनते थे, रात्रि क्लास भी करते थे, अब घर आकर तो फिर वही माया। तो ये वही हाल है, हम यहां गाड़ी चलानी सीख तो रहे हैं पर फिर जाके कहेंगे भीड़ में हम नहीं चला सकते। चाहे हम यहां दो दिन रहें, दस दिन रहें, एक मास रहें, अगर आपको याद हो तो शायद आठ दस दिन पहले ही बाबा की दो तीन मुरलियां इकट्ठी आई। बच्चे चार्ट रखना चाहिए, सुनी होंगी आप सबने भी। जब हम अपने अपने स्थान पर हैं तब तो बहुत बहाने हैं, अरे चार्ट कैसे रखें, समय नहीं मिला, भूल गई, आज योग तो लगा ही नहीं, चार्ट में क्या लिखें। अब यहां मधुबन में चार्ट लिखने के लिए क्या क्या बहाना है? है कोई बहाना? यहां तो चाहे कितनी बड़े से बड़ी सेवा हो, भारी सेवा हो, लेकिन हर सेवा का एक समय फिक्स है। रोटी बनाने वाले को कोई सारा दिन रोटी नहीं बनानी है। घरों में तो दो लोग के लिए रोटी बनाते हैं, सारा दिन रसोई में लगे रहते हैं, और यहां तो हजार दो हजार के लिए भी बन जाता है, टाइम फिक्स है। 9 बजे तक ही भोजन मिलेगा, अब जाके 9 बजे के बाद कोई ढूंढो थाली लेके, कुछ मिलेगा ही नहीं आपको, किचन बंद। और स्पेशली पांडव भवन में तो 9 बजे किचन बंद, ऐसे ही है ना अभी भी, सबका खाना पूरा हो गया। शांतिवन में तो फिर भी एक काउंटर खुला रहता है जो दिन रात 24 घंटे जब मर्जी जाकर खाओ, यहां तो नहीं है ना। चाय का समय, चाय समय पर ही मिलेगी, काउंटर बंद। तो हमारी सेवा बड़ी हो या छोटी हो, क्या मैं चार्ट रख सकती हूं? तो अगर हम समझते हैं कि अब हमें कुछ करना है, कौन कौन करना चाहते हैं? सोच सोच के हाथ उठा रहे हैं, सबने तो उठाया ही नहीं। हाँ, भाइयों ने हिम्मत की, क्यों माताएं? वैसे साउथ इंडिया वालों को हिंदी समझ तो आ रही है ना या नहीं आ रही है? हाथ नहीं उठाया, थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है। तो ये समझ आया कि चार्ट रखना है, समझ आया नहीं आया? सत्युग में किस किस को चलना है और पढ़ाई किस किस को पढ़नी है? फिर सत्युग में सबको चलना है, पढ़ाई सबको पढ़नी है, फिर चार्ट किस किस को रखना है? तो कहेंगे बहन जी आप ही रख लो हमारे हिस्से का भी। तो मीठे भाई बहनों, स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं तो उनको होमवर्क भी मिलता है, मिलता है नहीं मिलता है? और अगर बच्चा किसी दिन घर में आके ना पढ़े तो माँ बाप बल्कि खास पूछते हैं, आज तुम्हारी टीचर ने होमवर्क नहीं दिया क्या? और दो दिन अगर टीचर होमवर्क ना दे तो माँ बाप भी नोट लिख करके भेजते हैं प्रिंसिपल को कि बच्चे को आजकल टीचर होमवर्क नहीं दे रही है। और हमें तो बाबा होमवर्क दे रहा है और हम कर नहीं रहे हैं, अब ये क्या हिसाब होगा ये बताओ। तो दो काम हम करें, एक तो सब सेवाधारी बैठे हैं ना, अभी जितने भी दिन रहें, दो दिन रहो या 20 दिन रहो, हर 2 घंटे का चार्ट रखना है। रख सकते हैं 2 घंटे का चार्ट? अभी मान लो 9 बजे, भाई 7 से 9 बजे तक मैंने क्या किया और मेरी मनोस्थिति क्या थी। मान लो क्लास में तो बैठे हैं, आप कहेंगे अभी हम तो देखो कितनी देर से, 8:30 से तो हम क्लास में ही बैठे हैं, 7 बजे से बहन जी कह रही हैं, अच्छा 7 से 7:30 तो योग किया, फिर खाना खाया, फिर 8:30 आ गए, चलो ये तो ठीक हो गई बात। अब मेरी मनोस्थिति कैसी थी? 7 से 7:30 तक के योग में मेरा मन एकाग्र हुआ, और अभी भी मैं क्लास में बैठी हूं तो मेरा मन और बुद्धि बाबा से लगा हुआ है, या ये सोच रही हूं आज अभी क्लास पूरा होगा ना तो फलाने से ये बात करनी है। अभी कहां बैठे हैं, यहीं बैठे हैं या कहीं और किसी से मिल रहे हैं? चेक करो सूक्ष्म। तो ये हमें अपना चार्ट हर 2 घंटे का रखना है। और दूसरा काम क्या करना है, दूसरा होमवर्क क्या करेंगे? रोज सवेरे और शाम, अभी तो मधुबन में है ना इसलिए, बाबा को एक पत्र लिखें, जरूर लिखें, जिससे कि मेरे मन की प्रीत बाबा से जुटे। आप बात किससे करते हैं? आपके पास 10 लोगों का फोन नंबर होगा, लेकिन सबसे ज्यादा बात आप किससे कर रहे हैं? 10 से ही करते हैं? नहीं, कोई 2 या 3 ऐसे होंगे जिनको आप दिन में शायद 5 बार भी फोन करते होंगे, और बाकी जो 7 हैं उनको तो हो सकता है 10 दिन में 1 बार या महीने में 1 बार भी बात करते हो, या कभी 5-6 महीने में। जिससे आप 5 बार बात करते हैं, या तो उसकी कोई कारोबार है हमारे साथ, लेन देन है, ड्यूटी है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ऐसे करना है, या हमारी प्रीत है उससे, अरे आज ऐसे हो गया, वैसे हो गया, मुझे क्या करना चाहिए था, कैसे करना चाहिए था, अब क्या करें, होता है ना, राय लेते हैं। अब मेरा बाबा के साथ जो संबंध है, प्रीत है, वो किस लेवल की है? घड़ी घड़ी बाबा से बात करती हूं, फोन करती हूं, या हफ्ते में एक बार करती हूं? जैसे जहां फ्रेंडशिप होती है, कहते हैं ना, अभी खाना खा के, अरे आज हमने तो यहां बहुत अच्छा भोजन खाया, हाँ उसमें हमें पकौड़ा मिला, ये मिला, आपने क्या खाया? वो कहेगा मैंने तो घिया और रोटी। अरे देखो भगवान के घर में कितना अच्छा है। करते हैं ना ये बात भी तो करते हैं जहां हमारी दोस्ती है। तो क्या हम बाबा से ये बातें नहीं कर सकते? बाबा आपने इतना अच्छा ब्रह्मा भोजन दिया, उसमें चाहे पकौड़ा था चाहे घिया रोटी थी, लेकिन था क्या, क्या खाया आप सबने? भोजन नहीं खाया, ब्रह्मा भोजन, जिसके लिए कहते हैं देवताएं भी तरसते हैं। तो मैंने इस भावना से भोजन स्वीकार किया। चार्ट लिखो, बाबा को पत्र लिखो, बाबा आज कितना अच्छा, कितना स्वादिष्ट ब्रह्मा भोजन आपने दिया, मुझ आत्मा का नसीब कितना अच्छा है, शुक्रिया बाबा, थैंक यू बाबा। लिखो बाबा को पत्र, नहीं लिख सकते? आप लिखना शुरू करेंगे तो आप पाएंगे कि आत्मा में शक्ति आएगी, वरना हम सारा समय अपनी शक्तियां गवा रहे हैं। हम फोन पर किसी से बात करते हैं, भले आजकल वो फोन तो सारे फ्री हो गए हैं, फलाना फ्री, पता नहीं कौन सा क्या चलता रहता है, पर उसमें भी कुछ तो हम पहले जमा कराते हैं तब हमें फ्री कॉल्स मिलती है ना, तो उनमें तो हमारा खर्चा है। फिर जब बहुत बात कर लेते हैं बाद में क्या सोचते हैं, अरे अभी तो 9 बज गया, मुझे तो फलाने से मिलना था, ये काम करना था, अरे बातों में आज मैं भूल गई। तो आप देखेंगे जब हम देहधारियों से बात करते हैं, अधिकतर आप चेक करना, बात करने के बाद हम कुछ ना कुछ गवाते हैं, पश्चाताप करते हैं, या सामने वाला हमें कोई ऐसी बात कह देता है जो हमें थोड़ी सी फील हो जाती है, हम कहते हैं देखो मेरी तो इतनी अच्छी दोस्ती है, मैं इससे इतना प्यार करती हूं, और इस व्यक्ति ने मुझे ऐसे कह दिया, बहुत क्लोज मेरी फ्रेंड है लेकिन उसने कुछ ऐसा कह दिया जो मेरे को मेरे मन अनुसार नहीं था, तो दुख होगा या खुशी होगी? लेकिन एक बाबा ही ऐसा है, आप उसको पत्र लिखिए, आपको बहुत खुशी होगी, शक्ति आएगी, हल्कापन आएगा। मैंने तो आपको यही कहा है कि यहां दो समय, सवेरे और शाम बाबा को पत्र लिखना, आप चाहे 3 बार दिन में लिखिए, यहां आपके पास बहुत समय है। ऐसा नहीं वो पत्र आपका कोई पढ़ेगा नहीं, ऐसे नहीं मैं कहूंगी लाइए दिखाइए भाई जी आपने क्या लिखा है, ये पत्र आपकी अपनी दौलत है, आपकी अपनी चीज है, आप एक अलग से डायरी बनाइए। ऐसा नहीं कागज फाड़ के, फिर आजकल तो वो बाबा के कमरे में भी एक पत्र का लेटर बॉक्स रख देते हैं। आप अपनी डायरी बनाइए और उस डायरी में बाबा को पत्र लिखिए, अपनी डायरी संभाल के रखें, कोई नहीं आपकी उसको पढ़ेगा, आपकी अमानत है, आप जानते हैं और बाबा जानता है। अब आज मानो मैंने रात को सोने से पहले बाबा को पत्र लिखा, बाबा देखो मैं आपकी कितनी पुरानी बच्ची हूं, लेकिन अभी तक भी मेरा अमृत वेला कभी कभी मिस हो जाता है। बाबा आज तो मैं आपके सामने बैठी हूं, आपसे शक्ति ले रही हूं, अब मेरा अमृत वेला कभी भी मिस नहीं होगा। ऐसे नहीं बाबा शक्ति दो मेरा अमृत वेला मिस ना हो, तो बाबा कहता फिर मैं सबको क्यों ना शक्ति दूं, तेरे को अकेले को क्यों दूं। तो बाबा से मांगना नहीं है, बाबा कहता बच्चे तुम अधिकारी बच्चे हो, तो हम अपना अधिकार रखें कि वाह बाबा आप कितने अच्छे कितने मीठे कितने प्यारे हो, कितनी हमें शक्ति देते हो, पर बाबा अभी तक भी मेरे में ये कमजोरी है या अभी तक मैंने इसमें पूरे नंबर नहीं लिए हैं। बाबा बस अब तो आपका साथ मिल गया, आपका हाथ मेरे सिर पर है, अब मैं रोज अमृत वेला करूंगी। आप देखिए आपका अमृत वेला होता है या नहीं होता है, जरूर होगा, क्योंकि बाबा कहते हैं बच्चे शक्ति भरने के लिए, परिवर्तन के लिए, पुरुषार्थ के लिए अंदर में क्या चाहिए, क्या चाहिए, दृढ़ता चाहिए। अभी तक हम कभी सोचते ही नहीं है, क्लास सुन लिया गए, रास्ते में दो बातें कर ली, अरे ये क्लास तो बहन जी ने अच्छा कराया, युक्ति तो अच्छी बताई, और बस गए फिर अपने ही उसमें सो गए, अपनी बातों में सो गए। एक रिवाजी तौर पर जरा जब लेटे तो कह दिया गुड नाइट बाबा, अब तो मैं आपका बच्चा सोने जा रहा हूं, आपकी गोद में सो रहा हूं। फिर पता नहीं गोद में सो रहा है या वो व्हाट्सएप के साथ सो रहा है, वो तो आप भाई बहुत डर लगने लग गया है आजकल, बहुत चिंता है कि हमारे बाबा के बच्चे अपना समय कहां गवा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, है ऐसा या नहीं है। गुड नाइट माना गुड नाइट बाबा। बाबा की एक अव्यक्त मुरली है कुछ साल पहले की, जिसमें बाबा ने ये कहा था कि बच्चे आपका जो बेडरूम है, चाहे गृहस्थी है, आपको जो बातें करनी है, जो काम करना है, जो प्लानिंग बनानी है, वो पहले बना लो, बातें कर लो, लेकिन जब सोने के लिए जाते हैं, अपने कमरे में जाते हैं, तो बच्चे वहां जाकर कोई भी बात नहीं करनी है। सुनी होगी आपने भी ये मुरली, वहां जाकर बस बाबा को याद करो, गुड नाइट करो और बाबा के साथ सो जाओ। बाबा ने कह दिया, हमने सुन लिया, हम खुश हो गए, करेंगे हम अपनी मर्जी। अपनी मर्जी करेंगे तो फिर हम क्या पाएंगे बताइए, सिवाय पश्चाताप के और कुछ नहीं पाएंगे। तो जब दुनिया बदल रही है, समय बदल रहा है, वातावरण बदल रहा है, तो हमें अपने पुरुषार्थ की विधि को भी बदलना होगा या नहीं, बदलना होगा या नहीं। अब ये बात तो हमें समझ नहीं आई, कहेंगे हिंदी में बोला, आई समझ में, आई सबको, जिसको समझ नहीं आई जरा हाथ उठाना, दो को नहीं आई, समझा देना भाई दो को, तो बाकी सबको तो समझ में आई। तो अब आप बताइए कि अब हमें अपने पुरुषार्थ की विधि को बदलना होगा या नहीं होगा, क्या विचार है भाइयों का, क्या विचार है, तो क्या करेंगे अब, अब से और आज से ही करना है। दो बातें हमने कौन सी निकाली, एक तो चार्ट, मैंने आपको दो घंटे का कहा है, आप सोचते हैं नहीं मेरी ड्यूटीज कुछ ऐसी हैं, मैं दो घंटे के बाद चार्ट नहीं लिख सकती हूं। आप अपनी सुविधा अनुसार तीन घंटा, मैक्सिमम चार घंटा, इसके बाद का चार्ट चार्ट नहीं माना जाएगा। ऐसे नहीं रात को बैठ के बाबा अच्छा सारा दिन में, हाँ बाबा आज सारा दिन तो ठीक ही रहा, हाँ वो फलाना मिला ना उसने थोड़ा सा बाबा मेरे साथ पर चिंतन कर लिया, अब कर लिया तो फेल। अब जब मैंने 2 घंटे का, 3 घंटे मैक्सिमम 4 घंटे का भी किया, दोपहर को 12 बजे भोजन करने से पहले मैंने अपना चार्ट लिखा, तो आगे मुझे सावधान होने की मार्जिन तो है। तो सत्युग में आने के लिए ये थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। आज भी बाबा ने कहा था, बच्चे सत्युग में आने के लिए याद करना है तो इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी। अभी हमें वास्तव में ये मेहनत नहीं है। सेल्फ चेकिंग से अपने उमंग उत्साह को बढ़ाने की बात है। तो चार्ट रखना, आप अपनी सुविधा अनुसार उसको बना लीजिए। ऐसे नहीं कि अब दीदी ने तो कहा था 2 घंटा, भाई मेरे से तो नहीं हो रहा। हो सकता है आप में से कोई ऐसा अच्छा पुरुषार्थी हो, वो कहेगा मैं तो हर घंटे बाद ही चार्ट लिख सकता हूं। बहुत बढ़िया बात है, लिखिए। और बाबा को पत्र जरूर लिखेंगे, कर सकते हैं, कर सकते हैं माताएं। कोई ऐसा होगा जिसको लिखना नहीं आता होगा, वरना आजकल तो सबको लिखना आता है। आप अपनी टूटी फूटी भाषा में भी लिखो। तो ये जो आजकल हम ब्राह्मणों का स्टाइल हो गया है ना, कौन सा स्टाइल है, कौन सा स्टाइल है? योग में बैठेंगे, मुरली क्लास में बैठेंगे, कौन सा स्टाइल है? अगर बुरा ना माने तो बताओ। योग में बैठेंगे, मुरली में बैठेंगे, है ऐसा? क्यों? क्योंकि हमारा मन और बुद्धि थका हुआ होता है। ऐसे नहीं कि रात भर हम सोए नहीं थे। रात को मैं ये सोचकर कि कल तो अच्छा, आज मैंने बाबा को कहा है अमृत वेला मेरा अच्छा हो, मैं तो आज रात को बस अब 9:30 बजे जाके सीधा सो जाऊंगी। सो भी गई, बहुत अच्छी नींद की, और बाबा ने एकदम मुझे सवेरे 3 बजे भी नहीं, 4 बजे ठका उठा दिया। मैंने उठा और उठ के घड़ी देखी, अरे 4, गुड मॉर्निंग बाबा, बाबा कितने अच्छे हो, आपने मुझे उठा दिया। हाथ मुंह धोया, तैयार होके बाबा के कमरे में आई, 2-4 मिनट बैठी और फिर लगी मैं झूले में झूलने। कोई ऐसे झूलता है, कोई ऐसे मुंह खोल लेता है, शायद बाबा उसको टोली खिला रहा होता है। तो इसको योग तो नहीं कहेंगे ना। योग का गहरा संबंध हमारे चार्ट के साथ है, चार्ट का गहरा संबंध हमारे मन और बुद्धि के साथ है। हमारे मन और बुद्धि की सारी थकान खत्म हो जाएगी अगर हम अपना चार्ट का एक सिस्टम बनाएंगे, एक नियम बनाएंगे। बनाइए, स्वयं बनाइए, अपनी लगन से जो करेंगे वो हमारा है। हो सकता है आपको 4 घंटा 2 घंटे का ये सिस्टम नहीं जम रहा, ये बहन जी बच्चों वाली बात कर रही है। कम से कम दिन में 4 बार तो मैं चार्ट लिखूं। 4 बजे से लेकर 9 बजे तक मैंने सचमुच मेरी मनोस्थिति चार्ट किसका रखना है। ऐसे नहीं मैं योग में बैठी अमृत वेला योग किया, फिर किस स्थिति में बैठी थी, कितने नंबर दूंगी मैं अपने को, 10 में से 2 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर कितना दूंगी। मुरली क्लास में बैठी, मैंने किस विधि मुरली सुनी। अब 9 बजे जब नाश्ता करने लगी, अपने पास ही रखो ना चार्ट की वो छोटी सी एक डायरी या कॉपी, पहले चार्ट बाद में नाश्ता। ऐसे ही दोपहर का भोजन से पहले चार्ट बाद में भोजन, शाम की चाय से पहले पहले चार्ट फिर चाय, रात का भोजन से पहले चार्ट फिर भोजन। तो 4 बार तो आराम से बलिक कर सकते हैं। घंटों की बात भी छोड़ो, कौन घड़ी देखता रहेगा। तो अगर हम चाहते हैं हमारी अवस्था, हमारी मनोस्थिति मजबूत बने और जो बाबा ने आज कहा, इस देह को भूलो, इस देह से हम अगर डिटैच होना चाहते हैं तो अब हमें अपने मन और बुद्धि को बस एकदम क्या करना होगा, इसको सीधा करो। ये बहुत टेढ़ा है टेढ़ा कि नहीं है? हाँ, पता नहीं कहाँ कहाँ हमें घुमाता रहता है। सीधा माना, बस मैं और मेरा बाबा। तब हम इस बदलते हुए समय में आगे भी बढ़ेंगे और संभल के चल सकेंगे, नहीं तो व्यक्तियों के द्वारा, संबंधियों के द्वारा, वस्तुओं के द्वारा, प्रकृति के द्वारा, पांच तत्वों के द्वारा हमारे आगे बहुत पेपर आने वाले हैं। कहीं पानी नहीं मिल रहा, कहीं खाने को नहीं मिल रहा, कहीं भाई भाई का झगड़ा है, कहीं पड़ोसी का झगड़ा है, कहीं अर्थक्विक आ गया, कहीं फ्लड आ गया, कहीं कुछ भी नहीं हुआ, चलते चलते मेरा पांव फिसल गया, हड्डी टूट गई। अच्छा, कुछ भी नहीं हुआ, बाहर का वातावरण बिगड़ा हुआ था, झगड़े हो रहे थे, कर्फ्यू लग गया और मुझे बीपी की गोली चाहिए थी, आज ही गोली खत्म हो गई और आज ही कर्फ्यू लग गया, अब क्या करूं? तो ये सारे पेपर हमारे आगे आने वाले हैं। मैंने स्वयं को कितना तैयार किया है, मां बाप भाई बहन चाचा चाची किसी का भी समाचार आ गया, फलाने ने शरीर छोड़ दिया। आज बाबा ने कहा ना, कोई शरीर छोड़े तो बाबा क्या करेगा, है खुश होगा? कमाल है, कोई मर जाएगा बाबा खुश होगा क्यों? है क्योंकि वो बाबा के पास चला गया, तो बड़ा स्वार्थी है फिर तो। बाबा ने क्या रीजनिंग दी है, बहुत अच्छा कहा था बाबा ने। बाबा क्यों खुश होगा जी? अभी तो स्वर्ग आया ही नहीं, मेरा शरीर छूट गया, बाबा खुश होगा? बाबा ने कहा, बच्चे अच्छा हुआ ये पुराना छी छी शरीर छूटा, अभी नया मिले, बाबा खुश होगा। अफसोस करने की कोई बात नहीं, हमारा क्या हाल चाल है? मां बाप भाई बहन तो छोड़ो, कोई मित्र दोस्त भी, कोई मिलने वाला भी शरीर छोड़ दे तो हमारी तो शक्ल उतर जाती है, मुंह ऐसा छोटा सा हो जाएगा। तो इसको क्या कहेंगे, योगी कहेंगे? योगी तो आत्मा कहेंगे, आत्मा में शक्ति है। तो हमें इन सब बातों के लिए अपने आप को तैयार करना है। बातें तो बिल्कुल सामने अब खड़ी हैं, अब ऐसे नहीं कब होगा, हो रहा है। तो वर्तमान समय में अपने आप को महीन पुरुषार्थ की ओर ले चलें, ठीक है? और उसकी विधि बाबा को पत्र लिखें और चार्ट रखें। तो चलो अब सब अलर्ट होके बैठना, जो सोफे के सहारे जरा निंद्रा लोक में जा रहे हैं, हैं? आ जाओ भाई, नीचे आओ, निंद्रा लोक आपका बिस्तर तो आपके कमरे में है, यहां कहां जा रहे हो? हाँ, अच्छे से बैठो, नीचे बैठो, खुले खुले होके बैठो, इतनी हॉल में जगह पड़ी है। और एकदम सीधा भी ये अभ्यास हम करें, पहला अभ्यास तो यही करो। आप देखो हमारे मम्मा बाबा कैसे बैठते थे, कोई फोटो खिंचाने के लिए बाबा का ऐसा नहीं है। अपन लोग तो बैठते हैं ना, सोचते हैं भाई कोई कुर्सी सोफा, मैं भी सोचती हूँ मुझे कोई कुर्सी सोफा मिल जाए बैठने को। हम लोग जब बाबा से मिले 1963 में, मुझे आज तक याद है, बाबा यहाँ नीचे बैठे थे इसी हॉल में। आओ बच्चे, माना इतनी बड़ी आयु में, 90 साल की आयु में आसपास, और बाबा यहाँ धरती पर। आप में से कौन है 90-80 साल का, कोई बैठा है यहाँ? 70 का भी नहीं होगा, 80 साल 70 वाले हैं। तो देख लो हमारा क्या हाल है, हम नीचे बैठने से थोड़ा सोचते हैं ना, बुरी बात नहीं, आप इसको ऐसा नहीं सा। कहने का भाव आप देखो, बाबा ने कितना प्रकृति जीत था और बाबा एकदम ऐसा बैठता था, ऐसे नहीं होता था। ऐसे बैठो ना, फिर देखें कैसे आप ऐसे झूला खाते हो, खा ही नहीं सकते। तो अभी 5 मिनट ऐसा पावरफुल योग लगाओ, एकदम अपना पूरा ध्यान भ्रिकुटी में ले आओ। अभी केवल वो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार मत करते रहो, मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं। अरे भाई, ये तो वही है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। कितने दिनों तक, कितने साल? अब तो कहते ही लाल लाइट हो न हो, कहे न कहे, 1 सेकंड में बस मैं और बाबा दोनों आमने सामने। चलो बाबा के पास और महसूस करो सर्वशक्तिवान शिव बाबा के सामने मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा बैठी, बाबा से शक्तियां ले रही हूं।